अब यहाँ से जो अगली चंद आयतें इसको समझ लीजिए, फिर मैं आपके साथ इसको शेयर करूँगी। पहला मुकाम है जहाँ अल्लाह ताला औरतों मर्दों सबको, बस दफ़ा हम लिबास हिजाब की बात सुनते ही एकदम औरतों को निशाने पर रखते हैं, हालांकि दोनों के लिए अहकाम थोड़े बहुत फ़र्क हैं, लेकिन जनरल हुक्म जो वो दोनों के लिए हैं। तीन मुकाम ऐसे हैं कुरान पाक के जहाँ खुल कर ये मौजू आया है, जिसमें एक तो अभी हमारे सामने है सूरत अल अराफ़ में, और दूसरा मुकाम इंशाल्लाह सूरत नूर में आएगा, और तीसरा जब वो सूरत अल अहज़ाब में। तीनों का रब बता के आयत शुरू करूँगी। एक है जनरल ड्रेस कोड, एक औरत क्या पहने या एक मर्द क्या पहने, यानी आप इसको कह सकते हैं कि इवन इनसाइड द होम, घर में बच्चों के सामने, बहन भाइयों के सामने, औरत औरत के सामने, दूसरे लोगों के सामने एक औरत का ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। सूरत नूर में उससे सेकंड स्टेप है, घर के अंदर रहते हुए जो नॉन महरम होते हैं, जैसे देवर हैं, नंदों के बच्चे हैं या कजन्स हैं, उनके सामने किस रूप में आना चाहिए। और फिर सूरत अल अहज़ाब जो बिल्कुल लास्ट टॉपिक होगा उसमें आउटसाइड ड्रेस, कि एक औरत जब घर से बाहर जाए तो क्या होना चाहिए। तो इस फ़र्क को सामने रखते हुए कोशिश करेंगे कि हम देखें आज की नायतों का टॉपिक पर्दा हिजाब नहीं है, ये याद रखिए। इसलिए ना तो कोई हिजाब के बारे में सोचे, ना कोई निकाब के बारे में सोचे, ना पर्दे के लिए सोचे। हाँ, सिर्फ आज की नायतों को सुनते वक्त आपने मैंने अपने ड्रेस कोड को देखना है। क्या मेरा ड्रेस मॉडेस्ट होता है, हया वाला होता है कि नहीं होता, उसके लिए कुरान क्या कहता है। या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सवातिकुम व रीशा, ए औलाद आदम, हमने तुम पर लिबास नाजिल किया कि तुम्हारे जिस्म के काबिले शर्म हिस्सों को ढांके। व लिबास तकवा ज़ालिका खैर, और तुम्हारे लिए जिस्म की हिफाजत और जीनत का ज़रिया भी हो, और बेहतरीन लिबास तो तकवा का लिबास है, ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, शायद के लोग इससे सबक लें। ए बनी आदम, ऐसा न हो कि शैतान तुम्हें फिर उसी फितने में मुबतला कर दे जिस तरह इसने तुम्हारे वालदैन को जन्नत से निकलवाया था, और इनके लिबास इनसे उतरवा दिए ताकि इनकी शर्मगाह एक दूसरे के सामने खोल दे। वो और इसके साथ ही तुम्हें ऐसी जगह से देखते हैं जहाँ से तुम इनको नहीं देख सकते। इन शैतीन को हमने इन लोगों का सरपरस बना दिया जो ईमान नहीं लाते। वैज़ा फ़ालू फ़ाख़िशतन क़ालू वजदना अलैहा आबाअना, ये लोग जब कोई शर्मनाक काम करते हैं तो कहते हैं कि हमने अपने बाप दादा को इसी तरीके पर पाया है, और अल्लाह ने हमें ऐसा ही करने का हुक्म दिया है। इनसे को अल्लाह बेहयाई का हुक्म कभी नहीं देता। क्या तुम अल्लाह का नाम लेकर वो करते हो जो तुम जानते हो, तुम वो बातें कहते हो जिसके बारे में तुमको इल्म नहीं। कुल अमरा रब्बी बिलक़िस्त, वो अल्लाह की तरफ से हैं। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो मेरे रब ने तो रास्ते और इंसाफ का हुक्म दिया, और इसका हुक्म तो ये है कि हर इबादत में अपना रुख ठीक रखो और इसी को पुकारो, अपने दीन को इसके लिए खालिस रखकर। जिस तरह इसने तुम्हें अब पैदा किया इसी तरह अब तुम फिर पैदा किए जाओगे, फिर क्या होगा, एक गिरोह को तो इसने सीधा रास्ता दिखा दिया। दुआ कीजिए मैं और आप उन लोगों में शामिल हो जाएं, मगर दूसरे गिरोह पर गुमराही चिस्मा होकर रह गई, क्योंकि उन्होंने अल्लाह की बजाय शयातीन को अपना सरपरस बना लिया, और वो समझ रहे हैं कि हम सीधी राह पर हैं। ए बनी आदम, हर इबादत के मौके पर अपनी जीनत से आरास्ता रहो, और खाओ पियो और हद से तजावुज़ ना करो, अल्लाह ताला हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि अल्लती अख़रज लिबादी, कह दीजिए किसने अल्लाह की उतारी हुई जीनत को हराम कर दिया जिसे अल्लाह ने अपने बंदों के लिए निकाला था। ये डांट है, देखिए कौन कहता है कि अच्छा लिबास नहीं पहन सकते, कौन कहता है बेल नहीं लगा सकते, लेस नहीं लगा सकते, सच नहीं सकते, ये अल्लाह की दी हुई जीनत है। और किसने अल्लाह की बख्शी हुई पाक चीज़ें ममनू कर दी, कहो ये सारी चीज़ें दुनिया की ज़िंदगी में भी ईमान लाने वालों के लिए हैं, और क़्यामत के रोज़ तो खालिसतन उन्हीं के लिए होंगी। इसी तरह हम अपनी बातें साफ साफ बयान करते हैं इन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। यहाँ तक मैंने आयतें पर्पसली एक साथ पढ़ी, क्योंकि इन सब तक जो लिबास और उसके साथ जो चीज़ें थी वो पूरी होती हैं। तो बात यह है कि मक्का वालों ने दो तरह की बेहयाई का काम शुरू किया हुआ था। एक तो ये था कि हरम में जब तवाफ़ के लिए जाते तो नेकेड होके जाते, इबादत के नाम पर, नमाज के नाम पर बिल्कुल ख़ुद को न्यूट कर लेते। कोई पूछता कि कपड़े किधर गए, क्या देते दलील, कहते देखो इन कपड़ों में हम गुनाह करते हैं ना, तो इबादत में तो हम अल्लाह के सामने जा रहे हैं, तो हम इबादत में गंदे कपड़े पहने हम नेचुरल ड्रेस में जाएंगे। देखिए ज़रा शैतान कैसी उल्टी मत मार देता है। अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह तुम्हें बरहना होकर, नेकेड होकर इबादत करने का हुक्म देगा, कभी तुमने अक्ल को हाथ डाला इस बात पे? अब इस नैरियो में ये सारी आयतें नाजिल हुई, और हकीकत है कि आज भी दुनिया में या तो कल्चर के नाम पे, फैशन के नाम पे, या मज़हब के नाम पे न्यूडिटी फैली। आज भी लोगों का ये ख्याल है कि पहले दौर में लोग कपड़े नहीं पहनते थे और दिस एंड दैट, और ये जो एवोल्यूशन की थ्योरी डार्विनिज्म से चली उसके पीछे भी एक माइंडसेट यही था, एक दफ़ा तुम ये मान लो कि हम जानवरों की औलाद है नऊज़ुबिल्लाह, तो फिर जानवर कपड़े नहीं पहनते, हम भी नहीं पहनेंगे, जानवर पेरेंट्स का ख्याल नहीं रखते, हम भी नहीं रखेंगे, किसी हद तक बच्चों का ख्याल रखना होगा तो हम रख लेंगे, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। अब इस्लाम का कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि आप सब मैं गाइडेंस के लिए बैठे हैं तो इसका सिंपल सी बात याद रखिए, जिसका जितना लिबास ढका हुआ होगा ना, ये उसके उतना अल्लाह से करीब होने की दलील होगी। मॉडेस्टी, मॉडेस्टी क्या है कि एक इंसान अकेले में भी जब वो बिल्कुल तन तनहा है उस वक्त भी वो अल्लाह ताला को महसूस करे। दूसरी बात यह है कि दो चीज़ें आपने इधर पढ़ी हैं, रीश और सवातिकुम, यानी अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम्हारे लिए हमने लिबास जो बनाया है वो क्या है, खूबसूरती का ज़रिया भी है और साथ ही साथ वो युवारी सवातिकुम। तो फर्स्ट थिंग देखिए कि लिबास का मकसद क्या है, ये बड़ी अच्छी बात है जो कुरान में इधर हमारे सामने खुल गई। आप देखिए कि मैं और आप लिबास क्यों पहनते हैं, खूबसूरती के लिए पहनते हैं। कभी आपने सोचा कि अगर लिबास ना होते तो हम कैसे लगते, कभी गोश्त का एक पहाड़ बना हुआ देखें जहन में, खाली तो गोश्त भी को उठा कर लेके जाए तो मक्खियाँ बैठती हैं। ये तो शैतान ने अट्रैक्शन डाल दी ना नंगी चीज़ों में, वरना आप बताइए कि बरहना जिस्म को देखकर कराहत आती है कि खूबसूरत लगता है, ये तो कुछ ढका कुछ छुपाया, कुछ ढका कुछ छुपाया तो उसको खूबसूरत कर देते हैं। असल में लिबास हमारी कवरिंग है। हर इंसान के जिस्म पर कुछ ऐब होते हैं, कभी बाल होते हैं, कोई दाग धब्बा होता है, फिर ज़रूरत के तहत अल्लाह ताला ने जिस्म को मुख्तलिफ शेप दी होती है। ये कपड़े क्या हैं, युवारी सवातिकुम, अल्लाह ताला आपके मेरे ऐब दूर करता है, आपको मुझे दूसरों के सामने जलील नहीं करवाता कि देखो ऐसा है। इसीलिए आप देखिए कि फितरतन किसी के सामने नेकेड होना इंसान पसंद नहीं करता ज़िंदगी में, तो ज़िंदगी में जितनी हया ज़्यादा होती है ना बंदे को मरने के बाद भी फिक्र होती है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में आता है कि अपनी एक दोस्त के साथ एक दिन अपने दिल की बात कर रही थी कि मुझे बहुत इस बात की फ़िक्र है कि मरने वाले के साथ ये लोग क्या करते हैं कि जब उसकी डेड बॉडी होती है तो उसके ऊपर चादर डाल देते हैं, तो मुझे ये शर्म आती है कि जब लोग मेरी डेड बॉडी पे चादर डालेंगे तो मेरे जिस्म का साइज़ और मेरी यानी फिज़िक लोगों को पता चलेगी। तो उनकी जो दोस्त थी उसने कहा कि मैं जब हबशा गई थी तो मैंने एक चीज़ देखी कि वो जब औरत की मैयत होती थी ना तो मतलब ये चारपाई तो इसके साइडों पर छोटी छोटी स्टिक लगा देते हैं फिर उसके ऊपर चादर डालते हैं तो उसके अंदर पता नहीं चलता कि औरत है या मर्द है या मोटा है या पतला है। हज़रत फ़ातिमा ये बात सुनकर इतना खुश हुई, कहने लगी मैं तुम्हें नसीहत करती हूँ कि जब मैं मर गई तो मेरे साथ भी ऐसे ही करना और मेरा जनाजा रात के वक्त उठाना क्योंकि मैं नहीं चाहती कि दिन के उजाले में लोगों को मेरी बॉडी दिखे। ये है लिबास तकवा, आपके अंदर जितनी हया होगी ना आप अपने सामने भी ऐसे गंदे कपड़े नहीं पहनेंगे, क्या किसी महरम के सामने और गैर महरम के पहनने। आपका मेरा अंदर जो तकवा है ना, ये तकवा के साथ इसका ताल्लुक ऐसे है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ फिर इसमें सारे सवालों के जवाब आ जाएंगे। कीमती पहने के नहीं, 1,000 पाउंड का सूट पहन सकते हैं, 100 का पहने, 1,500 का जोड़ा पहने, देखिए 1,00,000 का जोड़ा पहनकर भी बंदे को नुकसान नहीं होगा और कभी 5,000 का जोड़ा पहनकर भी उसको नुकसान होगा जब अंदर तकवा नहीं होगा। मतलब कभी आप पिज़्ज़ा बनाएं तो आप देखते हैं कि सबसे टेस्टी चीज़ पिज़्ज़े में क्या होती है, उसका नीचे का डो, वो अच्छा गुंदा हो, उसमें नमक अच्छा हो, वो खूब खमीर हो जाए, आप ऊपर चिकन लगा लें, चीज़ लगा लें, जो मर्ज़ी लगा लें, वो और खूबसूरती पे टेस्ट में इजाफा तो हो सकता है लेकिन ऊपर आप 10 चीज़ें सजाएं और नीचे से कच्चा हो, नीचे उसमें स्मेल आ रही हो तो मज़ा नहीं आएगा ना। तो ये जो अंदर का तकवा ना, ये डो है, आपके मेरे अंदर कितनी हया है, मैं इस चीज़ में कैसे हूँ। अल्लाह ताला ने आपको लिबास पहनने का हुक्म दिया, 3 चीज़ें याद रखें, आरइश, ज़िबाइश और नुमाइश। आरइश के टू ब्यूटीफाई, ज़िबाइश के एडॉन, और ख़ूबसूरती को मोती लगा लें, सितारे लगा लें, चमकी लगा लें, बूटी लगा लें, जो आपका दिल करता है। आरइश भी जायज़ है, ज़िबाइश भी जायज़ है, यानी आप खूबसूरत कपड़ा ले सकते हैं फिर उसको मज़ीद भी सजा सकते हैं, डोरी लगा लें, मोती लगा लें, उसके स्टाइल में कोई डिज़ाइन बनवा लें, लेकिन तीसरी चीज़ जिसको आप नुमाइश कहते हैं ना, वो नहीं जायज़, टू शो ऑफ। इवन औरतों को भी नहीं शो ऑफ करना चाहिए, आप ख़ुद अपने लिए पहने, अपने शौहर के लिए पहने, तहदीस नेमत के लिए पहने, अल्लाह की दी हुई नेमतों को पहनकर इस्तेमाल करूं, जिसने दिया लिया उसका अजर हो जाए, इस नियत से पहने। आपने अपने लिए पहना, कोई और भी देख लेता, हु केयर्स, किसी और को भी अच्छा लग जाता, इट्स ओके, इट्स फाइन। बट अगर आप ये कहते हैं ना कि मैं बड़ी बनूँ, हदीस में आता है, जिसने शोहरत का लिबास पहना क़यामत के दिन उसको खुजली का लिबास पहनाया जाएगा। आप दूसरों को जला के खुश होते हैं, और अगर ये कल्चर बने, सुना था देखा तो मैं अंदर गई उसका तो रंग ही बदल गया, बार बार मेरे जोड़े को देख रही थी। जब ये कल्चर ही बन जाए औरतों की गुफ्तगू का मौजू, कहाँ से लिया, कितने का लिया, कितने का है, हज़ारों का, ब्रांडेड ये वो, अल्लाह के यहाँ आपकी क्या इज्जत है, आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता। तो लिहाजा अपने लिए पहनिए, खुश रखिए, अपने आप को खुश रखिए, रहिए। लेकिन इसमें यह है कि आपके दिल में इन नए कामों को करके, मैं एक सिंपल सा क्राइटेरियन रखती हूँ अपने लिए भी, आपको भी दूंगी, कि वो लिबास जिसमें आप नमाज नहीं पढ़ सकते ना, वो आप औरतों में भी नहीं पहन सकते। अंडर गारमेंट झलक रहे हों, टखने खुले हों, आपके बाजू खुले हों, आपकी गर्दन खुली हो, क्या आपकी मेरी उसमें नमाज होगी? तो फिर फरिश्ते कहाँ से आएंगे? और याद रखिए कि एक माइंड सेट होता है, हमारा लिबास हमारा मूड चेंज कर देता है। आप खुद जानती हैं, जो मैरिड औरतें वो भी जानती हैं, बच्चियों को भी पता है, घर के गंदे मंदे कपड़ों में बैठे हों, जो मर्जी काम करा लीजिए, कर लेंगे। जिस वक्त साफ सुथरे नहा धो के अच्छे कपड़े पहने, काम करने को दिल नहीं करेगा। क्या अच्छे कपड़ों में मूड चेंज नहीं हो जाता? शादी से आए तो मूड अच्छा नहीं हुआ होता? फ़र्क पड़ता है। तो अल्लाह ताला आपको मुझे नेमतों का इस्तेमाल सिखाता है, लेकिन ये नहीं पसंद करना कि आप दूसरों को रखें। अब बात रहेगी खूबसूरती पे, तो इतना ज़ोर है कि रीश ही रीश हो गया, जोड़ा नीचे हज़ार का तो उस पर सजावट जो है वो 10,000 की होगी। इट्स ओके, हलाल कमाइए, लगा लीजिए, कोई मना भी नहीं है, लेकिन उसको पहन कर अच्छे भी काम कर ले। लेकिन मसला क्या है, इतना कीमती कपड़ा, इतना महंगा कपड़ा, 10 गज़ कपड़ा भी लग गया, लेकिन यू आर ही सवाती कुम ना हुआ, ना बाजू झुके, ना गला छुपा, ना टखने खुल बंद हुए, ना कुछ ना हुआ, तो अब बताइए इसका क्या होगा? ये असल मसला है। दूसरी बात, इतना अच्छा इतना कीमती कपड़ा पहन कर किया क्या? अल्लाह को नाराज़ किया, इतनों को दिखाया। तो जिस वक्त घर से निकले, एक दफ़े में अल्लाह को दिखा दे, अल्लाह ताला मैं कैसी लग रही हूँ, सीधी सी बात है, बाकी चीज़ें बाद में आगे आएंगी। लेकिन लिबास की दो शरायत ज़रूर नोट कीजिएगा, शफाफ ना हो और वसाफ ना हो। शफाफ कहते हैं इंग्लिश में सी थ्रू। क्या आपके अंडर गारमेंट्स भी झलक रहे हैं? आपकी बॉडी दिख रही है? लोग जाते हुए कहेंगे एक एक अंग देख लो बाजी का। और देखो, आप देखिए जिस तरीके से इस सोसाइटी में, इससे मुराद मैं ये मुल्क नहीं कह रही, आज का पूरा ही कल्चर देख लीजिए, जिस तरह औरत के एक एक जोड़ को इन्होंने खोल के रख दिया, अल्लाह ताला इनको या तो हिदायत दे या गारत करे। औरत का कौन सा कर्व है जो इन्होंने नहीं खोला, और कौन सा अंग है जो उन्होंने नहीं दिखाया? और कुंवारे लड़के, यंग बच्चे, मर्द देखिए, कुंवारे भी हैं, बेचारों की बीवियाँ नहीं भी हैं, वो रह जाते जब ये हुसन के नज़ारे देखेंगे। और हुसन के रास्तों में देखने की क्या ज़रूरत है, अब तो हाथों में स्क्रीनें पड़ी हैं, तो बताइए कि उससे फिर दुनिया में क्या होगा जो आज हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में वो गंदी हरकतें करते कराते दिखते जाते हैं कि जो आमतौर पे नहीं होती। छोटे बारने हागनों के बच्चे आके अपनी टीचरों के ड्रेस को डिस्कस करते हैं, तो अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि तुम अपने आप को संभाल लो बस। उसके बाद 100 जोड़े बनाएं कि 2 बनाएं, आपकी मर्ज़ी है, हिसाब देना है, जितना मर्ज़ी दीजिए। एक चीज़ है आपको बनी बनाई मिल गई, और एक ये कि आप उसके लिए 6 नमाज़ें छोड़ें और आप उसके पीछे 2 दिन जलते कुटते रहें और आप साथ अपना खून जलाएं और हज़ारों लगाएं, फिर एक दफ़ा कि मैंने नहीं पहनना, फेंक दो इसको, तो ये तो फिर पूछो नहीं वाली बात है। तो बाकी पहनी, इस्लाम चाहते हैं आप पहने। देखिए खुशकी आती है ना पहनने से, आपका आप जले कुटे रहते हैं, आप दुखी रहते हैं, आप चिड़चिड़े रहते हैं, आप साफ़ सुथरे नहाए धोए नीट एंड क्लीन दिखें। इस्लाम ये भी नहीं चाहता कि आप बेढंगे हैं, कि आपने नीली कमीज़ पहनी तो पीली शलवार पहन लें और दुपट्टा सुर्ख ले लें, क्योंकि मुत्तकी बहुत है। तो तकवा से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये भी एक बहुत माइंड सेट है कि हमने दीन को बेढंगा करके दिखाया। आप अल्लाह की कायनात में देखिए कितना हुसन है, कितनी सिमेट्री है। कभी आप सोचते हैं कि पत्ते अगर सब्ज़ की जगह ग्रे होते तो कैसे लगते, और ऑरेंज अगर ऑरेंज कलर की बजाय कह लें पर्पल कलर का होता तो हम खाते उसको? तो कायनात का हुसन देखकर उसको समझिए। असल बात यह कि लिबास सुत तकवा खैर। अल्लाह ताला मुझे आपको अंदर का तकवा अता फरमाए। बाकी चीज़ें इंशाल्लाह आगे जाके दोबारा दूसरे मुकाम पे होंगी। बस आज एक छोटा सा काम कर लें, वार्डरोब खोलें, एक एक ड्रेस जिसको हैंग किया हुआ है ना बेचारे को इतने महीनों से, उसको देखें कि ये लिबास सुत तकवा पे आता है कि नहीं। थोड़ी बहुत ऑल्ट्रेशन करनी पड़ेगी आपको, किसी को ढीला कर लें, किसी को लंबा कर लें, किसी को, और आजकल तो हर चीज़ फैशन है। आजकल तो आप पट्टी भी लगा लेंगे, वो कहेंगे नया फैशन आ गया, और ये हो गया वो हो गया, तो दैट्स इट। लेकिन आइंदा के लिए, लेकिन मैं एक छोटी सी बात ना कहूँ तो मुझे लगता है ये ख़यानत होगी आज के हालात में, कि जो कपड़े टाइट्स के नाम पर आज हमारी बहू बेटियाँ बहनें बच्चियाँ पहनती हैं, उसको तो आप लिबास नहीं कह सकते, वो तो खाल के ऊपर एक खाल चढ़ी हुई है, सीधी सी बात है। जिसके अंदर से आपकी थाइस भी दिखती हैं, आपकी टांगों के मोटापा पतलापा दिखता है, उसकी तो घर में भी मेरा नहीं ख्याल पहनने की इजाज़त है जहाँ बाप भाई रहते हों, जहाँ कोई भी आपका बच्चा भी रहता है जो आपको वो देखेगा। ये चीज़ें इंसान को फिर अल्लाह से दिन ब दिन दूर करती हैं, बेसकूनी आती है। उसके बाद आप अपने हिसाब से जो चीज़ करते हैं इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने रखा है, आप शौहर हैं, आपके पास मैरिड लड़कियां, ज़ाहिर है आप में बच्चियां, कल उनकी भी शादियां होनी है। सबसे ज़्यादा खूबसूरत और जैसा मर्जी वेस्टर्न कपड़ा आपने पहना है, आप अपने शौहर के सामने पहन सकती हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने उनका हक रखा है। आप अपने आप को भी ना गुनाहगार करें। आप अगर बाहर नज़रों को उठाना है, मर्दों को चाहते हैं कि उनकी नज़रें बाहर ना टिकें, आप अपने शौहर की खुशी के लिए कुछ भी पहन लें, कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन हमारा हाल क्या है कि घर में हम मासियाँ और बाहर हम रानियाँ, तो बात सोचने की है ना, तो सारी चीज़ें उलट हो गई। अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमा दे। और अगर पूरी बात नहीं समझे तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन यह है कि अल्लाह ताला ने आपको मुझे एक क्राइटेरियन दे दिया। अब इसके बाद कुछ हराम चीज़ों का जिक्र कर दिया। कुलिन्नमा हर्रम रब्बी अल्फवाहिश, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहो कि मेरे रब ने जो चीज़ें हराम की हैं वो तो ये हैं। हराम क्या है? यानी लिबास हराम नहीं है, आराइश हराम नहीं है, हराम क्या है? नंबर एक, बेशर्मी के काम, ख्वाह खुले हों या छुपे, और गुनाह और हक़ के ख़िलाफ़ ज़्यादती, और ये कि अल्लाह ताला के साथ तुम किसी को शरीक करो जिसके लिए इसने कोई सनत नाजिल नहीं की, जिसके लिए इसने कोई सनत नाजिल नहीं की, और ये कि अल्लाह के नाम पर कोई ऐसी बात कहो जिसके मतलब तुम्हें इल्म न हो कि वो हकीकत में उसी ने फरमाई। हर कौम के लिए मोहलत की एक मुद्दत है, फिर जब किसी कौम की मुद्दत पूरी होती है तो एक घड़ी भर की तकदीम और ताखीर नहीं होती, और ये बात अल्लाह ने आगाज़ तख्लीक ही में फरमा दी थी। क्या? या बनी आदम इम्मा याती अन्नकुम रुसुलुम मिनकुम यकुस्सून अलैकुम आयाती। ए बनी आदम, अब नोट करें, बार बार बनी आदम है, यानी अब हमें आदम अलैहिस्सलाम की याद दिलाई जा रही है कि देखो तुम्हारे बाप को उस शैतान ने जन्नत से निकाल दिया था, कहीं तुम भी उसकी बातों में ना आ जाओ। ए बनी आदम, याद रखो अगर तुम्हारे पास खुद तुम ही में से ऐसे रसूल आएँ जो तुम्हें मेरी आयात सुना रहे हों, तो जो कोई नाफरमानी से बचेगा और अपने रवैये की इसलाह कर लेगा, इसके लिए किसी खौफ और रंज का मौका नहीं। और जो लोग हमारी आयात को झुटलाएंगे और इनके मुकाबले में सरकशी बरतेंगे, वही अहले दोजख होंगे जहाँ वो हमेशा रहेंगे। 3 सेकंड सोचिए क्या बनेगा। कर लो जितना करना है मजाक दीन का, बी रिबेलियस, और आखिरत कितने दिन की है। ज़ाहिर इससे बड़ा जालिम और कौन होगा जो बिल्कुल झूठी बातें घड़कर अल्लाह की तरफ मंसूब करे या अल्लाह की सच्ची बात को झुटलाए। ऐसे लोग अल्लाह की तकदीर के लिखे के मुताबिक अपना हिस्सा पाते रहेंगे, यहाँ तक कि वो घड़ी आ जाएगी जब हमारे भेजे हुए फरिश्ते इनकी रूहें कब्ज़ करने के लिए पहुँचेंगे। थोड़ा सा इमेजिन करें, सकरातुल मौत, इस वक्त वो इनसे पूछेंगे बताओ अब कहाँ हैं वो जिनको अल्लाह के सिवा तुम पुकारते थे। वो कहेंगे सब हमसे गुम हो गए। सारी ज़िंदगी हम लोगों को खुश करते रहते हैं और मौत के वक्त वो हम सब से दूर होंगे, और वो ख़ुद अपने खिलाफ गवाही देंगे कि हम वाकई मुनकर हक़ थे। अल्लाह ताला फरमाएगा जाओ तुम भी इसी जहन्नुम में चले जाओ जिसमें तुमसे पहले गुजरे हुए गिरोह जिन्नो इंस जा चुके हैं। हर गिरोह जब जहन्नुम में दाखिल होगा तो अपने से पहले गिरोह पर लानत करता हुआ दाखिल होगा, हत्ता कि जब सब वहाँ जमा हो जाएंगे तो हर बात वाला गिरोह पहले गिरोह के हक में कहेगा ए रब ये लोग थे वो जिन्होंने हमको गुमराह किया। देखिए जब हम दूसरों को देख के ट्रेंड सेट करते हैं ना, वहाँ उनको पकड़ाएंगे, ये अल्लाह इनको देखकर हम गलत काम करते थे, करो क्या, बस इनको आग का दोहरा अजाब दे। जवाब में इरशाद होगा हर एक के लिए दोहरा ही अजाब है मगर तुम नहीं जानते। क्या पता चला कि उनका भी अजाब तुम्हारा भी, जिसने गलत फैशन निकाला गलत रिवाज निकाला, हर पहनने वाले का उसको गुनाह होगा, और हर वो बंदा जो गलत तरीका इख्तियार करे उसके बाद दूसरों का गुनाह भी उसको होगा। वकालत उलाहुम लिउखराहुम, अब ये जहन्नुम है जहाँ गर्मी भी है और बदबू भी है और रश भी है, हर नए आने वाले जो हैं वो पहले से ज़्यादा रश कर रहे हैं, तो लोग एक दूसरे पे लानतान करेंगे। और पहला गिरोह दूसरे से कहेगा अगर हम काबिले इल्ज़ाम थे तो तुम्ही को हम पर कौन सी फजीलत हासिल थी, अब अपनी कमाई के नतीजे में अजाब का मज़ा चखो। इन्नल्लज़ीन कज़्ज़बू बी आयातिना वस्तकबरू अन्हा ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस्समा। इस आयत को सुनते वक्त भी थोड़ा सा तवज्जो रखिएगा। यकीन जानो जिन लोगों ने हमारी आयात को झुटलाया है इनके मुकाबले में सरकशी की, इनके लिए आसमान के दरवाजे हरगिज़ न खोले जाएंगे। इनका जन्नत में जाना इतना ही नामुमकिन है जितना सुई के नाके से ऊँट का गुजरना। मतलब क्या, इम्पॉसिबल। मुजरिमों को हमारे यहाँ ऐसा ही बतला मिला करता है, ये दरवाजे क्यों नहीं खुलते, उनकी रूहों को ऊपर नहीं जाने दिया जाता। हदीस में आता है कि जब एक नेक इंसान की जान जाती है तो उसकी रूह को बड़े प्यार से आसमानों पे लेके जाया जाता है, फिर सातवें आसमान तक पहुँच कर वो अल्लाह ताला के अर्श के आगे जाकर या जन्नत के कुछ मनाजर को देख कर वापस आती है। लेकिन जो बद शख्स होता है ना, उसकी रूह के लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाते और उसकी रूह को आसमान से नीचे पटक दिया जाता है कि तुम ऊपर नहीं जा सकते। इसी तरह उनकी दुआओं की कबूलियत के लिए दरवाजे नहीं खुलते, उनके नेक आमाल कबूल नहीं होते। मुजरिमों को हमारे यहाँ ऐसा ही बदला मिलता है, इनके लिए तो जहन्नुम का बिछोना होगा और जहन्नुम ही का ओढ़ना। ये है वो जजा जो हम जालिमों को दिया करते हैं, बखिलाफ इसके जिन लोगों ने हमारी आयतों को मान लिया और अच्छे काम किए। दुआ करें ज़रा अल्लाह हमें इनमें शामिल कर ले। और इस बाब में हम हर एक को उसकी वुसअत के मुताबिक ही ज़िम्मेदार ठहराते हैं। वो अहले जन्नत हैं जहाँ वो हमेशा रहेंगे। इनके दिलों में एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो कदूरत होगी, कीना, एनिमिटी, हसद, बुगज, इसे हम निकाल लेंगे। देखिए, जन्नत में कीने वाला शख्स नहीं जाएगा। और सच बताऊँ, दुनिया में अपने दिल को लोगों के ख़िलाफ़ सोचों से पाक कर लें, आपकी दुनिया भी जन्नत बन जाएगी। यहाँ बैठे बैठे ज़रा किसी एक इंसान का कम अज़ कम सोचें, ऐसे ही आपको अच्छा नहीं लगता, गुस्सा है, ग्रज है, चिढ़ है, आप कहते हैं इसकी तो मैं शक्ल भी ना देखूं, इसकी तो मैं बात बर्दाश्त नहीं करती। यहाँ बैठे बैठे के अल्लाह मैंने उसको माफ़ किया, मेरा दिल पाक कर दे। देखिए, एक बर्तन है, आपने उसमें जमजम डालना है, तो क्या उसमें कीचड़ लगा पानी होगा तो आप उसमें जमजम डालेंगे? रोज़ा रखा हुआ है, इतना लंबा रोज़ा है, इफ्तारी तक भूखे प्यासे रहेंगे तो दिल का बर्तन गंदा रखेंगे। पाक कीजिए, दिलों को साफ करें, खुश रहेंगे। आपको दुनिया का कोई बंदा गुनाहगार नहीं लगेगा, कोई ख़राब नहीं लगेगा, कोई बदनीयत नहीं लगेगा। आप यकीन से कह सकते हैं कि मैं दुनिया में किसी से नफरत नहीं करती, मुझे कोई बुरा नहीं लगता। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने लिए कह सकती हूँ, अल्लाह की रहमत से मुझे दुनिया का कोई बंदा बुरा नहीं लगता। आप कहेंगे लोग तो इतने गलत काम करते हैं, तो उनका कसूर भी हम पे है क्योंकि हमने बात नहीं पहुँचाई। लोगों में बड़ी खैर होती है, हमें बात नहीं करनी आती। तो दिलों को साफ़ करेंगे ना, तो आपको फिर अल्लाह ताला वो मौके देगा जो आपको घुटे हुए दिलों के साथ नहीं दे सकता। फरमाया, ऐसी जन्नत मिलेगी जिसके नीचे नहरें बहती होंगी। अब ज़रा जन्नत का सफ़र नोट कीजिएगा, अल्लाह अल्लाह करके जन्नत में गए, इतनी नमाजें, तहज्जुदें, रोज़े, सदका खैरात, हुकूकुल इबाद, लोगों को माफ़ किया, कर करा के बंदा मोमिन हाँफता काँपता जन्नत में पहुँचता। यकीन करे, जन्नत आसान नहीं है। और जन्नत में जाते ही पहला जुमला, वकालहमदुल्लाजी हदान अली हाजा, तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है जिसने हमें रास्ता दिखा दिया। ये हम खुद राह ना पा सकते थे अगर अल्लाह हमारी रहनुमाई ना करता।
ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.
پہلی بات، اللہ کی تعریف، ایمان والا ساری زندگی اللہ کی تعریفوں کے گن گاتا ہے، और यही बात जन्नत में जाके कहेगा। कोई और होता कहता, देखा मेहनत की थी ना, आगे तहज्जुदें पड़ी थी तो आगे। ये भी एक सेल्फ रेजिंग एटीट्यूड होता है, नहीं अल्लाह मेरी ताकत नहीं थी, ये तूने रास्ता दिखाया, मैं जन्नत में पहुंच गई। वमा कुन्ना लिनहतदिया, हम खुद ना रह पा सकते थे अगर हमारा रब रहनुमाई ना करता। हमारे भेजे हुए रसूल वाकई हक लेकर आए थे, उस वक्त निदा आएगी, अल्लाह हमें ये पुकार सुनाना। अन तिलकुमुल जन्ना, ये जन्नत जिसके तुम वारिस बनाए गए हो, تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی جو تم کرتے تھے. ہائی لائٹ کریں, کس بدلے میں ملی؟ اعمال کے. خواہشوں کا تو نہیں نام لکھا ہوا, دعاؤں کا تو نہیں لکھا ہوا, تمنائیں تو نہیں ہیں. تو عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. خواہشوں سے ملتی تو سب جنت میں جاتے. ونادا اصحاب الجنہ, اب اس کو امیجن کیجیے, یہ وجہ ہے جس کے لیے سورت کا نام الاعراف ہے. اعراف بیسیکلی ایک مقام ہے جنت اور جہنم کے بیچ میں. کچھ لوگوں کی نیکیاں بدیاں برابر ہوں گی, یا کچھ عمل ہیں جو جنت میں لے جانے کا تقاضا کر رہے ہیں, لیکن کوئی ایک گناہ راستے میں رکا ہوا ہے, اب اس کی وجہ سے جہنم میں جانے والے ہیں. ان کا جنت میں جانا پوسٹ پون کر دیا جائے گا, اور وہاں جا کر, اور یہ سارے اگلے منظر آپ دیکھیے گا کیا ہے, آپ اس کو بس امیجن کریں. ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار, پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے, ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے. کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے کیے تھے؟ یعنی ہمیں تو جنت مل گئی, تمہیں بھی ملی ہے جہنم کے نہیں؟ وہ جواب دیں گے ہاں. تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکار کر کہے گا, اللہ کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے. ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اوٹ حائل ہو جائے گی جس کی بلندی اعراف پر کچھ اور لوگ ہوں گے, وہ ہر ایک کو اس کی نشانیوں سے پہچانیں گے اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے, سلامتی ہو تم پر, تم بچ گئے ہو آگ میں جانے سے, بچ گئے ہو, سلامت رہ گئے ہو. یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے مگر اس کے امیدوار ہوں گے, اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو کہیں گے, اے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا. پھر اعراف کے یہ لوگ دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے. نوٹ کریں, جہنم میں بڑی شخصیات ہوں گی, جنت میں چھوٹے چھوٹے غریب ماڑے لوگ ہوں گے. کیا کہیں گے؟ دیکھ لیا تم نے, آج نہ تمہارے گروہ تمہارے کچھ کام آئے, نہ وہ ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے, اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کو تو اللہ اپنی رحمت میں سے کچھ بھی نہ دے گا؟ آج انہی سے کہا گیا, داخل ہو جاؤ جنت میں, تمہارے لیے نہ خوف ہے نہ رنج ہے. کون جیتا, کس کو فائدہ ہوا, دنیا کے بڑوں کو کہ آخرت کے بڑوں کو؟ اگلا مکالمہ تو بہت دل سوزی والا ہے, دل کو پگھلانے والی بات. اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو, آگ لگی ہو تو پانی چاہیے ہوتا ہے نا, جو رزق اللہ نے تمہیں دیا اسی میں سے کچھ پھینک دو. وہ جواب دیں گے, اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان منکرین حق پر حرام کر دی ہیں. نوٹ کیجئے, دنیا میں حرام سے نہیں رکے, آج حرام ہے. کون لوگ, کن کے اوپر حرام ہے؟ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا, اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر دیا تھا. دعا کیجئے چند لمحوں کے لیے, اللہ میں دین کو کھیل بنانے سے بچا, یہ آنکھ مچولی نہیں ہے, نماز روزہ اللہ کے لیے اور جینا مرنا دنیا کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے.
ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا قالوا ربنا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون.
آپ دیکھیے کہ جب مطلب سمجھ آتا ہے تو پھر ہی آیتوں کا مزہ آتا ہے نا. آپ پر میں اس قرآن کو جیسے مرضی پڑھ لیں لیکن جب تک ہم اس کے معنی پہ غور نہیں کریں گے بات نہیں بنے گی. اگلی آیتیں بھی بہت خوبصورت ہیں. پوری سورت الاعراف اتنی سافٹ دل کو نرم کرنے والی سورت ہے. اب کرنا کیا ہے؟ اس کتاب سے تعلق جوڑو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جن کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنایا. گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ یہ کتاب واقعی علم سے بھری ہوئی ہے. جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی خبر یہ کتاب دے رہی ہے؟ یعنی پھر نہیں سمجھتے تو موت دیکھ کر ہی پلٹیں گے. جس روز وہ انجام سامنے آ گیا تو وہی لوگ جنہوں نے اس کو نظر انداز کیا تھا کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے. پھر کیا اب ہمیں کچھ سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کریں یا ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کی بجائے اب ہم دوسرے طریقے پر کام کر کے دکھائیں؟ انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال لیا. یہ سچ ہے انسان خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارتا ہے. اور سب سے جو دکھی کرنے والی بات ہے نا, اس دنیا کا راستہ ون وے ہے. دیر از نو یو ٹرن. रास्ता नहीं बदल सकते सीधा। मैं और आप बचपन में नहीं जा सकते, हम बचपन तो छोड़ी, हम 2015 में भी नहीं अब जा सकते। जो वक्त गया सो गया, आज कुछ कर ले, टूडे नाउ और नेवर। और वो सारे झूठ जो उन्होंने घड़ रखे थे आज इनसे गुम हो गए। कितने ना समझ इतने प्यारे रब को छोड़ कर जाते हैं, जबकि इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलकस समावाती वल अर्द, दर हकीकत तुम्हारा रब अल्लाह ही है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर उसके बाद अर्श पर जलवा फरमा हुआ, जो रात को दिन पर ढांक देता है, फिर रात दिन के पीछे थोड़ा चलाता है, और सूरज और चांद और तारे पैदा किए, सब इसी के फरमान के ताबे हैं। ज़रा अल्लाह की कुदरत को महसूस करें इस वक्त अपने दिल पे। इतनी बड़ी हस्ती का कलाम मैं इस वक्त पढ़ रही हूँ, ये मेरी खुशकिस्मती है। इस वक्त दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में बैठकर कोई कुछ भी पढ़ रहा है ना, यकीन कीजिए आप उससे बड़ी चीज़ पढ़ रही हैं, आप सबसे बड़ी चीज़ पढ़ रही हैं। लेकिन क्या कहा जाए दुनिया का, कि दुनिया की तालीम के पीछे धक्के खाते हैं, 10-10 घंटे रोज़ हमारे बच्चों के और हमारे जवानों के लगते हैं वो किताबें पढ़ने के, जिसके बाद हो सकता है माँ बाप की भी कदर ना आए, अल्लाह की तो कोई दूर की बात रही। और वो किताब जो आज हमारे सामने है, इसकी क्या जगह है? क्या अपने को पूछें कि मेरी ज़िंदगी में इस कुरान की तालीम को लेने की क्या अहमियत है? लीस्ट प्रायोरिटी या सबसे ऊपर? सब कामों से फारिग होंगी फिर आऊँगी इसकी तरफ, और फिर कोई काम मिल गया तो फिर चली जाऊँगी, या फिर सब चीज़ों को पीछे करके सबसे पहले इस किताब को सीखना है? खबरदार रहो, इसी की खल्क है और इसी का अमर है, बड़ा बाबरकत है अल्लाह सारे जहानों का मालिक व परवरदिगार, करो कि अपने रब को पुकारो गिड़गड़ाते हुए। कोई एक घड़ी रात की दिन की रखें जिसमें गिड़गड़ाएं, वह खुफिया और चुपके चुपके, यकीनन वो हद से गुजरने वालों को पसंद नहीं करता। ज़मीन में फसाद बरपा ना करो जबकि इसकी इस्लाह हो चुकी, और अल्लाह ही को पुकारो खौफ के साथ और तमा के साथ, यकीनन अल्लाह की रहमत करीब है मुहसिनों के। अल्लाह को पता मेरे बंदे डर गए हैं, तो अल्लाह ताला कहते हैं फिर मुझसे मेरी रहमत मांग लो, मोहसिन बन जाओ, ख़ुद पे भी एहसान करो, लोगों पे भी करो, उनको इतनी हसीन किताब से जोड़ दो। और वो अल्लाह ही है जो हवाओं को अपनी रहमत के आगे आगे खुशखबरी लिए हुए भेजता है, फिर जब वो पानी से लदे हुए बादल उठा लेती हैं तो इन्हें किसी मुर्दा सर ज़मीन की तरफ हरकत देता है, और वहाँ मी बरसा कर इस मरी हुई ज़मीन से तरह तरह के फल निकालता है। देखो इस तरह मुर्दों को हालत मौत से निकालते हैं, शायद कि तुम इस मुशाहदे से सबक लो, जो ज़मीन अच्छी होती है वो अपने रब के हुक्म से खूब फल फूल लाती है, और जो ज़मीन ख़राब होती है इससे नाकिस पैदावार के सिवा कुछ नहीं निकलता। इस तरह हम निशानियों को बार बार पेश करते हैं इन लोगों के लिए जो शुक्र गुज़ार होते हैं। ये आखिरी आयतें और इनका अगली आयतों से रब क्या है कि ज़मीन की बात की ना, एक बेकार ज़मीन है, वहाँ से सिर्फ जड़ी बूटियाँ निकलती हैं, और एक ज़रख़ेज़ ज़मीन होती है। इसी तरह अब अगली यहाँ से पहली दफ़ा कुरान पाक में कससुल अंबिया यानी स्टोरीज ऑफ द प्रॉफिट शुरू होंगी। ठीक है, पीछे बनी इसराइल का किस्सा हमने पढ़ा, नसारा का तस्करा पढ़ा, लेकिन स्टोरिकल स्टाइल में यहाँ से शुरू हो रहा है, अल्लाह के नबी के मक्की दौर के आखिर में। अब आपको ये स्टोरी सुनाई जा रही है, और मक्का वालों पर एक आखिरी मोहर तबसब की जा रही है कि जब तक कोई नबी अपनी कौम के बीच में रहता है वो नबी अल्लाह की पकड़ से बची रहती है, और जब लोग अल्लाह के नबी को वहाँ से निकालते हैं तो वो कौमें तबाह होती हैं। और ज़मीनें भी दो तरह की है ना, एक फर्टाइल और एक बंजर। नबी और उनका साथ देने वाले फर्टाइल लैंड थे, और जो बंजर थे अल्लाह ने उनको नीस्तो नाबूद किया। ये कहानियाँ इंशाल्लाह हम आगे भी कई जगह पढ़ेंगे, इसको हम कोशिश करेंगे कि स्टोरी की तरह पढ़ें। सबसे पहले तरतीब के अतबार से जिस नबी का तस्करा है वो है हज़रत नूह। लक़द अरसलना नूहन इला क़ौमिही फ़क़ाल या क़ौमे उबुदुल्लाह, मैसेज पे नज़र रखिएगा कि नबियों का पैगाम क्या था। हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा, उसने कहा है बिरादरान कौम अल्लाह की बंदगी करो। स्टाइल नोट कीजिएगा, मेरी कौम मेरे भाई प्यार से बुलाते थे, लेकिन दावत के अल्लाह एक है, इसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं, मैं तुम्हारे हक में एक हौलनाक दिन के अजाब से डरता हूँ। उसकी कौम के सरदारों ने जवाब दिया, हमको तो ये नज़र आता है कि तुम सरीह गुमराही में मुबतला हो। नोट करें, मौलवी साहब क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, अल्लाह को मानो अल्लाह को मानो। हाँ, यही स्टाइल हमेशा रहा। हज़रत नूह ने कहा बिरादरान कौम मैं किसी गुमराही में नहीं पड़ा हुआ। देखिए हज़रत नूह भी तो उनको जवाब दे सकते थे ना कि तुम गुमराहो, नहीं, नेक लोग और अच्छे लोग जो होते हैं वो दूसरों के से तुलझते नहीं हैं। कहा मैं गुमराही में नहीं हूँ, बल्कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ, تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تم کو معلوم نہیں، کیا کہ تم پہ اللہ کی پکڑ آنے والی ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک شخص کے ذریعے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ تمہیں خبردار کرے اور تم غلط روی سے بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے، مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ اتنا بڑا معجزہ تھا یہ، اور وہ اندھے لوگ تھے۔ کیسے اندھے تھے؟ آنکھیں تھیں، حق سے اندھے تھے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، پھر ان کے بعد ایک اور قوم، اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، کیا تم غلط طریقوں سے پرہیز نہیں کرو گے؟ قال الملأ، نوٹ کیجئے گا، ہر دور میں کون سامنے آئے؟ پڑھے لکھے، ان لیڈ، پیسے والے لوگ، کیونکہ نبیوں کی جو دعوت ہوتی ہے نا، اس کا زیادہ اثر پڑتا ہی پیسے والوں پہ ہے یا پڑھے لکھے لوگوں پہ۔ جو بیچارے سیدھے سادے ان پڑھ لوگ ہیں، ان کو کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا۔ آج بھی دیکھیے، اگر دین پہ عمل کی بات آئے تو سرمایہ دار لوگوں کی فکر پڑے گی نا۔ جو بیچارے محنت کر کے روز دہاڑی کماتے ہیں، ان کو کیا لگے سود حرام ہے یا رشوت حرام ہے یا کیا؟ وہ کہتے ہیں ہو جائے حرام، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے۔ تو جن کے ایسٹس ہوتے ہیں نا، ان کو نبیوں کی دعوت پہ عمل کرنا مشکل لگتا ہے، اور وہی پھر آگے آ کے منہ مارتے ہیں کہ یہ نہیں اور وہ نہیں، اور آج کے دور کا یہ اور کل کے دور کا یہ تقاضا۔ لیکن دیکھیے نبی کتنے پیارے طریقے سے ان سے ڈیل کرتے ہیں۔ ان کی قوم کے سرداروں نے جو ان کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے، جواب میں کہا، ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا کرتے ہیں۔ اور ذرا یہاں ٹائٹل بھی نوٹ کریں، نبیوں کو کیا کیا مل رہے ہیں لقب؟ بے عقل، بے وقوف، جاہل، نعوذ باللہ۔ تو ہم چھوٹی سی بات پہ رونے لگتے ہیں، ہائے دین پہ آئے نا تو لوگوں نے ہمیں یہ سمجھنا شروع کر دیا۔ کوئی بات نہیں، حق کی یہ پہچان ہے کہ لوگ ان کو بے وقوف کہتے ہیں۔ اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ لیجئے ایک اور ٹائٹل آ گیا، جھوٹے۔ اس نے کہا، برادرانے کو، میں بے عقلی میں مبتلا نہیں ہوں، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ بھول نہ جاؤ کہ تمہارے رب نے نوح کی قوم کے بعد تم کو ان کا جانشین بنایا اور تمہیں خوب تن و من کیا۔ پس اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو۔ آج بھی یہی طریقہ تبلیغ ہونا چاہیے، لوگوں کو نعمتیں یاد دلائیں۔ کوئی کہتا ہے نا، نماز نہیں پڑھتا بچہ، تو آپ کہیں کہ بچے کو نعمتیں دکھاؤ۔ میاں نماز نہیں پڑھتے، ان کو دکھائیں اللہ نے آپ کو کیا کچھ دیا ہے۔ تو جب نعمتوں کی یاد دہانی ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے پھر اللہ کی طرف توجہ جائے۔ فرمایا، امید ہے کہ تم فلاح پاؤ گے۔ انہوں نے جواب دیا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا کہ ہم اکیلے ایک اللہ کی عبادت کریں اور ان کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے؟ دیکھ لیجئے، ہر دور کا ایک ہی مسئلہ، باپ دادا کا طور طریقہ نہیں چھوڑنا۔ اچھا تو لے آ وہ عذاب جس کی تمہیں دھمکی دیتا ہے اگر تو سچا ہے۔ اس نے کہا، تمہارے رب کی پھٹکار تم پر پڑ گئی اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا۔ کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے، جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ اچھا تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ آخر کار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیتوں کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے۔ دیکھیے آج بھی تو اللہ ایسا کر سکتا ہے نا، لیکن اللہ نے امت مسلمہ کو مہلت دی ہوئی ہے کہ نہیں، تم ذرا اپنی اصلاح خود کر لو۔ پچھلی قومیں پوری کی پوری تباہ ہو جاتی تھیں، لیکن اللہ نے اپنے نبی کی امت کو محفوظ رکھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ آگے بھی محفوظ رکھے۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، برادرانے قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی کھلی دلیل آ گئی، یا اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، بس اس کو چھوڑ دو اور اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک دردناک عذاب تم کو آ لے گا۔ یاد کرو وہ وقت جب تم اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور تم کو زمین میں یہ منزلت بخشی کہ آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عالی شان محل بناتے ہو اور اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو۔ بس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے نہیں بنے ہوئے تھے، کمزور طبقے کے ان لوگوں سے کہا جو ایمان لے آئے تھے، کیا تم واقعی جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ دیکھیں ڈاؤٹس ڈال رہے ہیں، آر یو سیریس، آر یو شیور کہ وہ ٹھیک لوگ ہیں؟ غلط لوگوں کے پاس تو آپ نہیں جا رہے، یہ سٹائل ہے۔ انہوں نے جواب دیا، بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہم اس کو مانتے ہیں، اس بڑائی کا دعویٰ کرنے والوں نے کہا، جس چیز کو تم نے مانا ہے ہم اس کے منکر ہیں۔ پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور پورے تمرد کے ساتھ، یعنی پورے جوش کے ساتھ اور سرکشی کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کر گزرے، اور صالح سے کہہ دیا، لے آ وہ عذاب جس کی تمہیں دھمکی دیتا ہے، اور اگر تو واقعی پیغمبروں میں ہے، آخر کار ایک دہلا دینے والی آفت نے اسے آ لیا، ایک آفت نے انہیں آ لیا، اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ اور صالح یہ کہتے ہوئے ان کی بستیوں سے نکل گئے۔ یہ درد محسوس کیجئے گا ایک مرد مومن کا، ایک نبی کا۔ ان کو خوشی نہیں ہوتی جب قومیں تباہ ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ کیا کہا؟ اے میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام آپ کو پہنچا دیا، اور میں نے آپ کی بڑی خیر خواہی کی، مگر میں کیا کروں کہ تجھے اپنے خیر خواہ پسند نہیں۔ سچ ہے نا، آپ کتنے بھی پیار سے لوگوں کو بلا لیں، لوگوں کو یقین ہی نہیں آتا کہ آپ واقعی پیار سے بلا رہے ہیں یا شاید اس میں کوئی آپ کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا، پھر یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہ کیے؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو؟ بل انتم قوم مسرفون، حقیقت یہ کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ آج کے لوگ ان آیتوں پہ بھی پریشان ہیں، کہتے ہیں قرآن سے ان کو نکالو، کیونکہ اب گیزم جائز ہو گیا، چرچ نے اس کو مان لیا، حکومت نے اس کو مان لیا، گے میرج از الاؤڈ، اور قرآن بہت ایکسٹریمسٹ بناتا ہے، دیکھو بیچاروں کو گے نہیں بننے دیتے۔ دیکھیے اللہ نے پوری قوم تباہ کر دی، اور آج میرے آپ کے بچوں کی نسلوں، ہماری نسلوں کے آگے سب سے بڑا فتنہ آج کے دور کا یہ ہے۔ آپ سب بھی جانتے ہیں، جو کبھی بڑوں نے نام نہیں سنے تھے، آج کے بچے اس چیز کو سفر کر رہے ہیں۔ اگر ان کے ذہن نہ کھولے تو پتہ نہیں کل ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوہم من قریتکم، مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے، بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ یہ آخری حل ہوتا ہے بزدلوں کے پاس، نکال دو ان کو یہاں سے، رنگ میں ڈھنگ ڈال رہے ہیں، رنگ میں بھنگ ڈال رہے ہیں، مزہ ہی نہیں لینے دیتے، جینے کا کوئی لطف ہی نہیں ہے، اب ہر بات میں پابندیاں، یہ وہ۔ خیر آخر کار ہم نے لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو، سوا ان کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، بچا کر نکال دیا، اور اس قوم پر برسائی ایک بارش۔ پھر دیکھو ان مجرموں کا کیا انجام ہوا، پتھروں کی بارش، سٹون رین ہوئی۔ اور آپ نے بھی سنا ہوگا، آپ دو تین واقعات ایسے پچھلے سال سے اب تک ہو چکے ہیں کہ پتھر برسے ہیں۔ ابھی یہ چند ماہ پہلے امریکہ کی ایک اسٹیٹ میں بیچ پہ لوگ جس حالت میں ہوتے ہیں اس حالت میں تھے، اور اوپر سے پتھر پڑے ہیں، اور وہ کیسے بھاگے ہیں، کیا ہوا ہے، لیکن یہ خبریں عام نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے اپنی پکڑ سے۔ یہ مجرموں کا انجام ہے، اللہ آج بھی یہ سب کر سکتا ہے، لیکن مہلت دی ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے کہا، برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی صاف رہنمائی آ گئی ہے، لہٰذا وزن اور پیمانے پورے کرو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو، اور زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی، اسی میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم واقعی مومن ہو، اور زندگی کے ہر راستے پر حزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو خوف زدہ کرنے، اور ایمان لانے والوں کو اللہ کے راستے سے روکنے لگو، اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے در پہ ہو جاؤ، یاد کرو وہ زمانہ جب کہ تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دیا، آنکھیں کھول کر دیکھو دنیا میں مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے اور دوسرا ایمان نہیں لاتا، تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ دولت مند قوم تھی، کل اس کی کہانی پڑھیں گے انشاءاللہ پارے کے آغاز میں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اس پارے کے اینڈ پہ ایک دعا کرتے ہیں کہ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعفنا قبل ذلک۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دعا جو پڑھتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آنے والے عذابوں سے بچ جاتا ہے، کہ اللہ ہمیں اپنے غضب سے نہ پکڑ اور اپنے غصے میں ہمیں ہلاک نہ کر۔ ورنہ آج دنیا کے جو حالات ہیں دیکھ لیجئے، کسی وقت بھی پتھروں کی بارش بھی ہو سکتی ہے، اور کسی وقت بھی زلزلے اور آندھیاں آ سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔